संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 27 अगस्त 2021 के बुलेटिन की सुर्खियां। काबुल हवाई अड्डे पर गुरुवार को हुए विस्फोटों में सैकड़ों हताहत, हमलों की तीखी अंतर्राष्ट्रीय निंदा। अफगानिस्तान में लगभग 1,40,00,000 लोगों के सामने है पेट भरने का संकट। रोहिंग्या शरणार्थी संकट को हुए 5 साल, यूएन प्रमुख ने लगाई सम्मानजनक म्यांमार वापसी की पुकार। और बढ़ रही है हाइपर टेंशन से पीड़ित लोगों की संख्या, 72 करोड़ लोगों को आवश्यक इलाज उपलब्ध नहीं। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हवाई अड्डे पर गुरुवार 26 अगस्त को हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। मीडिया खबरों के अनुसार इन हमलों में 13 अमेरिकी सैन्य कर्मियों सहित 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है और अनेक घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने भी गुरुवार को इन हमलों की निंदा की थी। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने इन हमलों को भयावह करार देते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट ने काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए इन हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है, जो कि आईसिल या दाएश से जुड़ा हुआ एक गुट बताया गया है। सुरक्षा परिषद ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए अफगानिस्तान में आतंकवाद से मुकाबले की अहमियत को रेखांकित किया है। सुरक्षा परिषद ने जोर देकर कहा है कि ये सुनिश्चित करना होगा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी अन्य देश के लिए खतरा पैदा करने या हमला करने में ना किया जाए। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के कामकाज के लिए अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों और यूएन के सदस्य देशों के राजनयिकों और वाणिज्यिक दूतावास के कर्मचारियों की सुरक्षा बेहद अहम है। इससे पहले गुरुवार को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने काबुल हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमलों की निंदा की थी।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वे माय टोटल कंडेमनेशन अबाउट द हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक इन काबुल।
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि वो काबुल में भयावह आतंकवादी हमलों की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं और इस हमले में जान गंवाने वाले सभी अफगानों और वहां अन्य अफगानों की सेवा करते हुए मारे जाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल ने जिनीवा में शुक्रवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए काबुल हवाई अड्डे पर आतंकवादी हमलों को एक भयावह कृत्य करार दिया। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट है कि इन हमलों का मकसद था कि जितना संभव हो सके उतनी बड़ी संख्या में आम लोगों को निशाना बनाया जाए। यूएन मानवाधिकार कार्यालय ने इस हमले के दोषियों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में जल्द से जल्द लाने की मांग की है।
विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आगाह किया है कि अफगानिस्तान में हिंसक संघर्ष, सूखे और COVID-19 महामारी से अविश्वसनीय स्तर पर एक संकट आकार ले रहा है, जो स्थानीय समुदायों को मानवीय विनाश की ओर धकेल रहा है। WFP के क्षेत्रीय निदेशक जॉन एलियफ ने बताया,
14 million people in Afghanistan today are struggling to put food on the table. The price of wheat has gone up by 25% in the last month.
अफगानिस्तान में करीब 1,40,00,000 लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। अनाज की कीमतें पिछले कुछ महीनों में 25% तक बढ़ गई हैं। मौजूदा आर्थिक हालात में स्थानीय जनता के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाना और बाल कुपोषण से निपटना चुनौतीपूर्ण है। ऐसे हालात में स्थानीय आबादी के लिए कोई भविष्य देख पाना भी कठिन है। एक ऐसा भविष्य जो खाद्य सुरक्षित हो और बच्चों के लिए कुपोषण से भी मुक्त हो। अफगानिस्तान के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के क्षेत्रीय निदेशक जॉन एलियफ के शब्द। उन्होंने कहा कि सूखे और पिछले 3 वर्षों में जल की किल्लत के कारण 40% से अधिक फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे खाद्य असुरक्षा का संकट और गहरा गया है। उधर अफगानिस्तान में गहराते मानवीय संकट को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM ने गुरुवार को 2,40,00,000 डॉलर की तत्काल राहत रकम जुटाने की अपील जारी की है, ताकि पिछले 2 महीनों में देश भर में विस्थापित हुए लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाई जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि 30 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में हाइपरटेंशन यानी उच्च या बढ़े हुए रक्तचाप की अवस्था वाले वयस्कों की संख्या पिछले 30 वर्षों में 65 करोड़ से बढ़कर 1,28,00,000,000,000 हो गई है। इनमें से 72 करोड़ लोगों को इस स्वास्थ्य समस्या यानी ब्लड प्रेशर का ऐसा इलाज उपलब्ध नहीं है जिसकी उन्हें जरूरत है। कुछ और जानकारी सुनिए सचिन गौड़ से।
हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से हृदय, मस्तिष्क और गुर्दे की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। विश्व भर में ये मौत और बीमारी के सबसे बड़े कारणों में से है। ये पहली बार है जब हाइपरटेंशन संबंधी वैश्विक रुझानों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में वर्ष 1990 से 2019 के दौरान 180 से ज्यादा देशों में 30 से 79 वर्ष आयु वर्ग में 10 करोड़ लोगों के ब्लड प्रेशर और उनके उपचार संबंधी आंकड़ों की पड़ताल की गई। धनी देशों में हाइपरटेंशन की दर बहुत कम है, जबकि निम्न और मध्य आय वाले देशों में ये बढ़ गई है। कनाडा, पेरू और स्विट्जरलैंड में वर्ष 2019 में हाइपरटेंशन से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या सबसे कम थी। वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका और पैराग्वे में महिलाओं और हंगरी, पैराग्वे और पोलैंड में पुरुषों में हाइपरटेंशन की दर सबसे अधिक है। घर या किसी स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लड प्रेशर को मापकर हाइपरटेंशन के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। साथ ही कम कीमतों वाली दवाओं के जरिए इसका उपचार भी संभव है। इसके बावजूद हाइपरटेंशन की अवस्था में रह रहे 58 करोड़ व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य समस्या से अनजान हैं। 72 करोड़ लोगों को जरूरत के अनुरूप उपचार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में लाने के लिए दवाओं के जरिए उपचार हर 4 में से एक महिला और हर 5 में से एक पुरुष के लिए ही संभव हो पा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों की सुरक्षित, इच्छानुसार और गरिमामय ढंग से म्यांमार वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाए जाने के लिए तत्काल कार्रवाई किए जाने का आह्वान किया है। महासचिव गुटेरेश ने एक बयान जारी करके सचेत किया है कि म्यांमार में व्यवस्थागत भेदभाव, अधिकार छीने जाने और सामुदायिक हिंसा के बुनियादी कारणों से निपटा जाना बेहद अहम है। उन्होंने ऐसी कार्रवाई तत्काल किए जाने की पुकार लगाई है। 25 अगस्त 2021 को रोहिंग्या शरणार्थी संकट के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। यूएन प्रमुख ने बुधवार को जारी अपने वक्तव्य में क्षोभ जताया कि आज भी लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी विकट हालात में रहने के लिए मजबूर हैं। इन शरणार्थी शिविरों में रोजमर्रा का जीवन कठिन है और अक्सर यहाँ के निवासियों को भारी बारिश के कारण जलभराव, भूस्खलन के अलावा आग लगने की घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रोहिंग्या समुदाय, बांग्लादेश सरकार व मेजबान आबादी के साथ एकजुटता जारी रखने का आह्वान किया है, जो कि उदारता का भाव दर्शाते हुए रोहिंग्या शरणार्थियों की मेजबानी कर रहे हैं। यूएन महासचिव ने भरोसा दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र सक्रिय रूप से समर्थन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी खालिद खैरी ने सोमवार को सुरक्षा परिषद को बताया कि यमन में संबद्ध पक्षों के बीच गृह युद्ध समाप्त करने के लिए किसी राजनीतिक समझौते पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। ध्यान रहे कि यमन में गृह युद्ध 7वें वर्ष में दाखिल हो गया है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
मध्य पूर्व, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए सहायक महासचिव खालिद खैरी ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि हिंसक संघर्ष का समाधान तलाश करने के लिए जरूरी है कि एक समावेशी और यमन के लोगों के नेतृत्व में राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू किया जाए। उन्होंने इस संबंध में वर्ष 2015 की शांति योजना का जिक्र किया, जिसमें राष्ट्रव्यापी युद्ध विराम लागू किए जाने, सना हवाई अड्डे को फिर से खोले जाने, हुदायदा बंदरगाह के जरिए ईंधन और अन्य सामान की आवाजाही के लिए प्रतिबंध हटाए जाने का आह्वान किया गया है।
All parties must prioritize civilian needs and abstain from weaponizing the economy, particularly in light of the critical humanitarian situation in the country.
यूएन के सहायक महासचिव खालिद खैरी कह रहे थे कि सभी पक्षों को नागरिक जरूरतों को समझना होगा, अर्थव्यवस्था के हथियार के रूप में इस्तेमाल से बचना होगा, विशेष रूप से देश में गंभीर मानवीय संकट को ध्यान में रखते हुए।
तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।